नीति वचन अध्याय 16। आइए हम नीति वचन अध्याय 16 निकालें। नीति वचन अध्याय 16 पद 1। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जिसको हम महसूस नहीं कर पाते, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। यदि हम उसकी संतान हैं, तो वो निरंतर हमारे जीवनों में कार्य करता रहता है। ये एक अद्भुत बात है। बहुत बार हम जो कुछ कहते हैं खुद नहीं समझते, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से होता है। ये बात अकस्मात ही मुंह से निकल जाती है। परमेश्वर हृदय को तैयार करता है, और हृदय को तैयार करना परमेश्वर का कार्य है। फिलिपियों के नाम पत्री में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2:12-13 पद, डरते और कामते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर व्यवस्था लिख रहा है, जैसे उसने यरमिया से प्रतिज्ञा की, वो दिन आएगा जब मैं पत्थर की पट्टियों पर फिर अपनी व्यवस्था न लिखूंगा, परंतु हृदय रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। परमेश्वर अपना वचन बोता है, वो अपनी इच्छा आपके हृदय में बोता है। इसलिए हृदय को तैयार करना प्रभु की ओर से होता है। कैसा महान है परमेश्वर की संतान होना और अपना जीवन उसको सौंपना, ताकि परमेश्वर अपने मन की इच्छा से आपकी अगुवाई करें और आपके हृदय में सब कुछ रोपित करें। नीति वचन अध्याय 16 पद 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है, उसकी नजर में सब कुछ सही है, ये ठीक है या फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आपने जो कुछ भी किया है, उसे आप उचित ठहराते हैं। हम अनेक बहाने बनाते हैं। यदि वो काम गलत भी हो, तो भी हम उसका कारण उचित ही बताते हैं, या कोई अच्छा सा बहाना बना देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, वह मनुष्य जो बहाने बनाने में अच्छा है, वो किसी और काम के लिए अच्छा नहीं होता है। मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यहोवा हमारे उद्देश्य को जानता है। वो जानता है कि हमने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे हमारा इरादा क्या था, और यही तो मुख्य बात है। नीति वचन अध्याय 16 पद 3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बहुत बार हम चिंता में रहते हैं कि हमने बहुत सा काम अच्छी तरह नहीं किया है। जब हम परमेश्वर की सेवा की ओर देखते हैं, हम प्रायः कहते हैं, ओ मुझे इससे भी अच्छा काम करना चाहिए था। क्या आप इससे अच्छा काम कर सकते थे? नहीं, मैंने सबसे अच्छा काम किया जो मैं कर सकता था। यही तो परमेश्वर चाहता है। आप अपनी ओर से जितना अधिक अच्छा काम कर सकते हैं, उससे अधिक अच्छा काम करने की आशा परमेश्वर आपसे नहीं रखता। आपको अपने कार्य परमेश्वर को समर्पित करने हैं। अपनी ओर से अच्छा काम करें और बाकी परमेश्वर को सौंप दे। आपकी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। प्रभु, तू तो जानता है कि यही मेरा सबसे अच्छा काम है। मुझे खेद है कि तूने मुझ जैसा साधन काम में लिया कि तेरा काम करे, परंतु मैंने यथाशक्ति ये काम किया है। अब मुझे घर जाकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ओ मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था। आप अपनी ओर से अच्छा करें और बाकी परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। इससे आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, आप विश्राम पाएंगे। यही सबसे अच्छा काम था जो मैं कर पाया। धीरज धरे, जो उत्तम काम मैं कर सकता था मैंने किया। प्रभु तू जानता है, ये मेरी ओर से सबसे अच्छा कार्य है। अब तू चाहे तो इसे अपना ले। ये एक रोचक पद है, परंतु समझने में कठिन है। नीति वचन अध्याय 16 पद 4। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यहां दुष्ट शब्द वास्तव में आने वाले न्याय के संदर्भ में है। यशया की पुस्तक में लिखे वचन से लोगों को काफी परेशानियां हुई है। जहां परमेश्वर कहता है कि उसने दुष्टों को बनाया है, वे कहते हैं परमेश्वर कैसे दुष्टों को बना सकता है। इस शब्द का अर्थ वास्तव में न्याय है। परमेश्वर ने सब चीजें अपने लिए बनाई। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 पद। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिर्जी गई। परमेश्वर ने ही दुष्टों को या बुराई को बनाया है। परमेश्वर ने उन्हें दुष्ट नहीं बनाया, लेकिन उसने दुष्ट लोगों को बनाया। क्या आप अंतर समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने लोगों को बनाया, उसमें कुछ दुष्ट है। उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वे है। परमेश्वर ने उन्हें बनाया। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। इस तरह आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने दुष्टों को बनाया। उसने उन्हें दुष्ट नहीं बनाया, परंतु वे दुष्ट हो गए। उसने न्याय को भी ठहराया जो इन दुष्ट मनुष्यों पर आएगा। नीति वचन अध्याय 16 पद 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। उन बातों में से एक जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उसको देखने के लिए आपको फिर से अपना धर्मशास्त्र निकालकर नीति वचन पढ़ना होगा और घृणा का शब्द ढूंढना होगा कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि घृणा क्या है, लेकिन ये सुनने में बुरी है और मैं जानता हूं कि मैं ऐसा होना नहीं चाहता। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ओह, घमंड! ये कैसा विनाशकारी है! हम इसके बारे में आगे देखेंगे। नीति वचन अध्याय 16 पद 5 में आगे लिखा है, मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हाथ पे हाथ मारना, सौदा निश्चित करना, हाथ से हाथ मिलाना शक्ति दिखाता है, परंतु आप न्याय से बच नहीं सकते। नीति वचन अध्याय 16 पद 6, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। परमेश्वर की दया और सच्चाई, आपको याद है यूहन्ना अपने प्रारंभिक शब्दों में यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 1 अध्याय 16 पद, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। निश्चय ही अनुग्रह और दया शब्द दो बहनों के समान है। दया और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। नीति वचन 16 अध्याय पद 6 में आगे लिखा है, और यहोवा के भय या श्रद्धा मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर है, और यहां यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। इन दोनों बातों में मेल नहीं है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कहता है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हुए बुराई की इच्छा या उससे लगाव नहीं रख सकते, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। नीति वचन 16 अध्याय पद 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वो उसके शत्रुओं का भी उसे मेल कराता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि हमारे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है, न कि अपने आप को। हम अधिकतर अपने ही मापदंड प्रयोग करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और इस प्रकार अपना मूल्यांकन करते हैं। यही आकर यहूदी धर्म के अगुए व्यवस्था के विषय में चूक गए थे। सबत के दिन बोझ नहीं उठाना, इसका तात्पर्य क्या है? यदि आप सबत के दिन नकली दांत लगाए तो वो बोझ उठाना है? नहीं, अर्थात आप उस वस्तु का बोझ उठा रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में नहीं है। अब यदि आपका पैर लकड़ी का है तो निश्चय ही वो बोझ में गिना जाएगा, आप उसे सबत के दिन नहीं पहन सकते हैं। ऐसी ही अनेक छोटी छोटी बातें हैं। आप जानते हैं कि वे इन बातों को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। आप इन सब बातों को निकाल बाहर करें। मुख्य सवाल यह है, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है? और आप पूरी युक्ति से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों सही है। हो सकता है कि आपके युक्तियुक्त कार्य के उपरांत भी परमेश्वर प्रसन्न ना हो। अतः किसी का विशेष कार्य मनुष्य की समझ में सही है या गलत है, ये अर्थ नहीं रखता है। प्रश्न ये है कि क्या वो परमेश्वर को भावता है? मैं लालसा करता हूं कि मेरा जीवन परमेश्वर को भावता हो। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8 अध्याय 29 पद, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह अर्थात परमेश्वर प्रसन्न होता है। यदि आपका मापदंड यही है तो आपको सही या गलत की चिंता नहीं करनी है। आपको बैठकर ये परीक्षण नहीं करना पड़ेगा कि ये काम वास्तव में सही है या गलत, परंतु ये करना है कि क्या ये काम परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। जब मनुष्य के मार्ग परमेश्वर को पसंद आते हैं, तब वे उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। नीति वचन अध्याय 16 पद 8, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। भजन संहिता 37 16 पद, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। वही विचार। नीति वचन अध्याय 16 पद 9, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। कई बार प्रभु ने हमारी योजनाओं को बदल दिया है। हमने योजना बनाई कि हम कुछ करें, परंतु परमेश्वर ने बीच में रुकावट डालकर हमें रोक दिया। मैं रुकावट के प्रति सदैव संवेदनशील रहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर मुझे रोक रहा है। यदि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में हैं और सोचते हैं, ठीक है प्रभु, जब कभी मैं उस पथ पर चलूं जिस पर तू नहीं चाहता, तो मुझे रोक देना, इसलिए मैं बाधाओं के आने की संभावना मानकर चलता हूं। अतः जब बाधाएं आए तो मुझे विचलित न करेंगी, क्योंकि मेरा जीवन और मेरे कदम प्रभु तुझ पर आश्रित है। हम अपने हृदय में युक्ति करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पांवों को स्थिर करता है। मुझे ऐसा ही चाहिए, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, मैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे रोके जब कभी मैं मार्ग से भटक जाऊं, और ऐसा कुछ करें तो मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे बीच में ही रोक दे। मैं चाहता हूं प्रभु मुझे बाधित करे। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे पांवों को स्थिर करे। नीति वचन अध्याय 16 पद 10। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। अब इस पद में एक सुंदर दृश्य है, जब राजा परमेश्वर का भय मानने वाला हो तब परमेश्वर उसके मुंह को दिशा देता है, वो उसके होंठ और स्थान को दिशा देता है। राजा के मुंह से देववाणी निकलती है, न्याय करने में उसे चूक नहीं होती। नीति वचन अध्याय 16 पद 11। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटकरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। आगे भी हम इस तरह के नीति वचन मिलेगा जो इसके बारे में व्याख्या करेगा। नीति वचन के समय में जाएं तो हम देखेंगे उन लोगों का व्यापार तराजुओं से होता था, इसलिए उनके पास बटखेरों की थैली होती थी, और भ्रष्ट व्यापारी बटकरों की दो थैलियां रखते थे, एक से वे माल बेचते थे और दूसरे से खरीदते थे। कसाईयों ने तोलते समय वर्षों तक तराजू पर अपने अंगूठे रखे, अर्थात आम भाषा में कहें तो डंडी मारी। इससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम व्यापार में सच्चे और ईमानदार रहें। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। नीति वचन अध्याय 16 पद 12। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। इसलिए जो लोग अगुवाई में हैं वे परमेश्वर के सम्मुख अधिक उत्तरदायी होते हैं। नीति वचन अध्याय 16 पद 13 से लेकर 15 तक। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वो प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। यहां ये चार नीति वचन एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सभी वचन राजाओं का उल्लेख करते हैं। अब सुलेमान प्रकट करता है, नीति वचन अध्याय 16 पद 16। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, मुझसे मांग तुझे जो चाहिए, और सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने बुद्धि मांगी है, तूने एक उत्तम चीज मांगी है, और मैं तुझे बुद्धि देता हूं, और उसके साथ वो सब भी देता हूं जो तूने नहीं मांगा, धन संपत्ति और अन्य चीजें। इसलिए बुद्धि और समझ सोने चांदी और संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। नीति वचन अध्याय 16 पद 17। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। ये नीति वचन बहुत प्रचलित है, लेकिन गलत धारणा के साथ। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, गिरने से पहले घमंड आता है। वचन ऐसा नहीं कहता। नीति वचन अध्याय 16 पद 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व होता है, घमंडी आत्मा नीचे की जाएगी। याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। नीति वचन 16:19। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। ऐसे वचन है जो घमंड और दीनता के विषय चर्चा करते हैं। नीति वचन 16:20। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। कितना अच्छा है प्रभु पर अपना विश्वास रखना। खुशहाल मनुष्य की पहचान। जीवन के उतार चढ़ाव से आप विचलित नहीं होते, क्योंकि आप कहते हैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। ऐसा मनुष्य सौभाग्यशाली कहलाता है। नीति वचन 16:21-22। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। समझदारी क्या है? नीति वचन 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। दाऊद ने सुलेमान से कहा, जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का सोता है। हे परमेश्वर, हमें उत्तम समझ दे। मैं समझता हूं समझ प्राप्त करना एक विशेष बात है, क्योंकि ये सहानुभूति की कुंजी है। बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां वे अनुकंपा प्रदर्शन में कठिनाई का सामना करते हैं। मैंने कई वर्षों तक गर्मियों के शिविर समर कैंप चलाए। वहां ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके साथ आचरण की समस्या होती है। सलाहकार मेरे पास आए और उन्होंने कहा, अच्छा होगा उस बच्चे को दल से निकाल दे। एक सलाहकार ने कहा, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, वो शरारती बच्चा है। आप जानते हैं वो रात को चिल्लाता है और हमेशा मुसीबत खड़ी कर देता है। उसके साथ निर्वाह नहीं कर सकता, उसे वहां से बाहर कर दो, नहीं तो उसे कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अंदर आया और उस लड़के को बुलाया। वो कांपता हुआ अंदर आया, जैसे मैं कोई राक्षस हूं। मैंने जाकर उसके लिए एक आइसक्रीम खरीदी और उससे बातें करने लगा। मैंने उसके घर के बारे में पूछा, उसके अतीत के बारे में पूछा। उस छोटे बच्चे ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका पिता कहां है, वो उसे देखने कभी नहीं आता है। उसके घर में दूसरे आदमी हैं जो उसे दुत्कारते रहते हैं। बहुत बुरी हालात है, आप विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे अनेक छोटे बच्चे हैं। मैंने परामर्शदाताओं को हालात समझाए। अब उस बच्चे के प्रति सबके व्यवहार में फर्क है। अब सब समझते हैं कि वो लड़ाई क्यों करता है। अब सब लोगों का रवैया उस बच्चे के प्रति बिल्कुल बदल गया है। इस छोटे बच्चे को अपने अस्तित्व के लिए झगड़ना पड़ता था। लोग अब उसके साथ संवेदना रख सकते हैं और उसके साथ उचित व्यवहार कर सकते हैं, तथा उसके साथ सुसमाचार का काम भी कर सकते हैं। समझ एक महत्वपूर्ण चीज है। एहेस्केल ने कहा, एहेस्केल 3:15, मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। आपको भी दूसरे मनुष्यों के बीच बैठने की आवश्यकता है, ताकि दूसरों को समझ सको। मेरे विचार में अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखना संबंधों की कुंजी है। हमारे साथ जन प्रबंधन की समस्या होती है। यदि प्रबंधक गण कर्मियों के साथ बैठकर और कर्मी प्रबंधक गण के साथ बैठकर बात करें तो बहुत सी जन प्रबंध की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रबंधक गण समझ सकेंगे कि कर्मियों को जीवन यापन के लिए अधिक वेतन की आवश्यकता है और मजदूर ये जान पाएंगे कि प्रबंधन को बनाए रखने के लिए अधिक मुनाफे की आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि एक पत्नी वहां बैठे जहां उसका पति बैठता है और एक पति वहां बैठे जहां उसकी पत्नी बैठती है तो इससे कितनी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। पति रात को घर आता है, वह दिन भर के बोझ और मेहनत से थका हुआ बैठ जाता है और टीवी देखता है। पत्नी से उसकी कोई बात नहीं होती। यदि उसकी पत्नी उसके इस बोझ को समझे, परेशानियों को समझ सके, इसी तरह यदि पति दिन भर बच्चों के साथ हो और उनसे बातें करता रहे तो वो भी समझ जाएगा कि उसे अपनी पत्नी से दूसरे स्तर पर बात करने की आवश्यकता है। दूसरे लोगों की स्थिति को समझना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें करुणा और प्यार की आवश्यकता है। जिसके पास करुणा और प्यार है उसके लिए वो जीवन का सोता है। हे प्रभु, होने दे कि हमारी समझ और भी अच्छी हो। नीति वचन अध्याय 16 पद 23। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है, इसलिए हृदय जीवन का विषय है। नीति वचन अध्याय 16 पद 24। मन भावने वचन मधु भरे छते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मुझे नहीं मालूम यदि वैज्ञानिकों ने शहद और हड्डियों के बीच कोई संबंध स्थापित किया हो, लेकिन शहद प्राणों को मीठा लगता है और हड्डियों को हरा भरा करता है। ये क्या है? मन भावने वचन, आनंददायक और सुंदर वचन कितने अच्छे होते हैं। नीति वचन अध्याय 16 पद 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं जो आज झूठे नबियों के द्वारा छले गए हैं, जो झूठी धार्मिक विधियों के द्वारा ठगे गए हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि वे उचित मार्ग पर है। नीति वचन 14 अध्याय 12 पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। एक और वचन है, नीति वचन 21 अध्याय 2 पद। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। लेकिन यहां ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। जीवन का मार्ग, जीवन का दर्शन जिसे मनुष्य चुनता है, वो मार्ग उसे ठीक जान पड़ता है। खाओ पियो और आनंद करो, कल तो मर ही जाना है। आपने किसी मनुष्य से बात की होगी और वो अपने तत्व ज्ञान से संतुष्ट है। उसका ज्ञान स्वयं की दृष्टि में ठीक है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन अध्याय 16 पद 26। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। लालसा वो चीज है जो मजदूर को परिश्रम के लिए प्रोत्साहन देती है। नीति वचन 16 अध्याय पद 27। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। याकूब कहता है, याकूब 3 अध्याय 5 और 6 पद, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है जो चीजों को जला देती है। नीति वचन अध्याय 16 पद 28 से लेकर 31 तक। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। मैं सोचता था कि संसार में सबसे खराब अवस्था वृद्धावस्था है। आप सबको पता है कि जब लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं तब वे वृद्ध हो जाते हैं। उस समय उनको मधुर, दयावान और प्रेमी होना चाहिए, क्योंकि वे अंत की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए उन्हें नम्र होना चाहिए। सफेद बाल वाली छोटे कद की वृद्ध स्त्री मेरे ध्यान में है, जो अनुचित शब्दों का प्रयोग करती है। उम्र का तकाजा है कि ऐसी भाषा काम में ना ली जाए। मेरी पुत्री एक दवा की कंपनी में काम करती थी। उसे अस्पताल में एक छोटे कद की वृद्ध स्त्री को दवाइयां पहुंचानी होती थी। जब मेरी बेटी उस स्त्री के घर के अंदर गई तो वो उस वृद्ध स्त्री को देखकर सोचने लगी, ओह कितनी सुंदर छोटी सी वृद्ध स्त्री। तब उस स्त्री ने कहा, तुम कौन हो, तुम यहां क्या कर रही हो? और उसने अशोभनीय शब्द बोलने आरंभ किए तो उस स्त्री की आयु के अनुसार नहीं थे। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं, परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं है। नीति वचन 16 अध्याय पद 32। विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। ये बातें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। विलंब से क्रोध और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। नीति वचन अध्याय 16 पद 33। चिट्ठी डाली जाती तो है, पर्चियां डालकर कई बार हम निर्णय लेते हैं, ये तो तिनके को निकालने जैसा है। चिट्ठी डाली जाती तो है। नीति वचन अध्याय 16 पद 33 में आगे लिखा है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। मार्गदर्शन या दिशा जानने के लिए या निश्चित होने के लिए पर्ची डाली जाती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और समस्याओं का निवारण परमेश्वर की ओर से आता है।